अब आगे देखिए, सूरत हामीम सजदा के बाद सूरत शूरा है, दोनों का रब पहले देख लेते हैं। हामीम सजदा में जमीन पर तकबर करने वालों को आदा इल्लाह कहा गया। पिछले पारे में हमने कल पढ़ा कि कैसे कयामत के दिन वो परेशान होंगे और उनका बुरा हाल होगा। सूरत शूरा में शूरा पर मबनी इस्लामी रियासत कायम करके अल्लाह के दुश्मनों का कला कमा कर दो। आज आपको एंटी इस्लाम कितने नजरियात दिख रहे हैं? और कुछ नहीं तो ये सेक्स के मुतल्लिक जो कुछ दुनिया आज पेश कर रही है, ये आपकी वही के खिलाफ है। सेम जेंडर मैरिजेस वही के खिलाफ है। शादी करना और बच्चे पैदा ना करने देना, ये वही के खिलाफ है। औरत और मर्द दोनों नहीं कमाएंगे तो घर नहीं चलेगा, या रिजाल कवामून अलनिसा के हुक्म से खिलाफ है। तो आपका मेरा काम क्या है इस वक्त? इस वही को आम करें। मेरा आपका इसमें क्या हिस्सा होगा? हम ना किसी मुल्क की कैबिनेट में, ना सेनेटर्स में हैं, ना हम में से कोई एमपी है, ना एमएनए। हमारा काम यह है कि इस वही को आम कर लें। ये काम आप और मैं कर दें। कोई आटा गूंदता है, कोई रोटी पकाता है, कोई उसको सर्व करता है। कहाँ गंदम उगती है और कहाँ से कटती है और कहाँ से बिकती बकाती आपके मेरे हाथ में आती है। बिल्कुल इसी तरह से इसको लेकर चलिए और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमसे इस किताब की खिदमत मरते दम तक ले और बासर किस्म की तबलीग हमसे ले ले। थोड़ा सा सूरह शूरा को समझिए, बहुत कॉम्पैक्ट सूरह है, इसी पे तो पूरा पारा खड़ा हुआ है। सूरत शूरा जो है ना, ये असल में पूरे इस्लाम की शरीयत आपको दिखा रही है। 53 आयात है इसमें, 42 नंबर की सूरह। मरकजी मजमून क्या है? वही की रोशनी में इकामते दीन के लिए इज्तमाई कोशिशों की जरूरत। दीन का पौधा हो, इस्लाम का पौधा हो, ये अकेले अकेले की कोशिशों से नहीं लगता। इसकी एक दलील जो हर एक को आती आयत, क्या? इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम। हम कहते हैं ना, हमें रास्ता दिखा। आप ये क्यों नहीं कहते इहदिनी? नमाज तो मैं अकेली पढ़ रही हूँ, सूरह फातिहा तो मैं खुद पढ़ रही हूँ, कि मैं कोरस में तो नहीं हूँ या जमात में तो नहीं हूँ। तो वहां जमा का लफ्ज इहदिना में कह के सिरात मुस्तकीम से अल्लाह ने साबित कर दिया, एक अकेला हिदायत पे नहीं जम सकता। ये आजकल रोजे रख रहे हैं ना, खुद ही गिनते हैं, हाय 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 15 हो गए, पता लगा? सच बताएं मुझे, अल्लाह जानता है मेरे जैसे बंदे को ये तक नहीं अभी तक पता कि खुलता किस वक्त है और बंद कितने बजे होता है। रोज पूछती हूँ, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि दिल दिमाग के अंदर कहीं लफ्ज रोजा है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ना लगता है, ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है। जब खा लिया, एक दिन मैं बैठी थी, मैंने नहीं घड़ी देखी, अब कितने कई मिनट ऊपर चले गए, क्योंकि फोन पे पता नहीं अलार्म बोला नहीं, कहने मुझे पता ही नहीं चला कि रोजा खुलने का टाइम हो गया या नहीं। यानी कहने का था कि एक धुन सवार होती है ना, क्योंकि सब रख रहे हैं। लग पता जाएगा जब 6 रोजे आपने कौन से रखने हैं, शवाल के। वो 6 रोजे शवाल के और 10 पार्टियां ईद की, हर पार्टी इम्तिहान। अब सब खा रहे हैं और आप कह रहे नहीं मेरा शवाल का रोजा है, तो किसी एक लाडली दोस्त ने खुलवा देना है फिर दूध। नहीं, फर्ज थोड़ी है, नफी नहीं है ना। तो वदा के लिए अपनी ईद पार्टियों के साथ रोजों को प्लान करें, उसका भी एक टाइम टेबल बना ले, और पीर जो मैं रातों को पार्टी ना रखें और उस दिन रोजे रख लें, खुद ही 8 रोजे हो जाएंगे। ये आपको एक टिप दे रही हूँ, पूरे शाबान में पीर और जुमेरात का रोजा रखें तो आपके 6 रोजे वो भी हो जाएंगे और बाकी जो भी होगा। अब ये फिकी सवाल ना मुझसे और पूछिएगा, अच्छा मेरे छुट्टे हुए ये वो, वापिस आइए। तो इज्तमाई कोशिशों की जरूरत है। हवामीम के सिलसिले की तीसरी सूरत है, यानी जो हामीम से शुरू हो रही है। इसका नजूल क्या में मक्का का आखिरी दौर है, बल्कि 1390 मदीना मुनवरा में इस्लामी हकूमत के क्याम की तमहीद है। जैसे आप कुछ बायलॉज बनाते हैं ना, जैसे अभी हमारे पास नूरुल कुरान, इधर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, तो जब इसको रजिस्टर करवाना था तो सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है उनमें एक चीज बायलॉज थे, कि आपके बायलॉज क्या, आप क्या करेंगे इधर, क्या होगा होगा। तो ये बायलॉज ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना है, तमहीद यानी उसके ऊपर ही फिर सब कुछ आगे चलता है। ये इसी दौर में नाजिल हुई जिसमें सूरह ज़ुख़रुफ़, अनाम और आराफ भी नाजिल हुई, और इसी दौर में नबी सल्लम के कत्ल की साजिशों का तذکرہ था। इसीलिए अल्लाह ताला ने अब खूबसूरत तरीके से सिखा दिया कि शरीयत को नाफिज करने और इकामते दीन के लिए शूरा कायम करो। लीडर किसी वक्त भी दुनिया से जा सकते हैं, एक बंदे पे हमारा दीन चलता ही नहीं है। ये तो आप देख लीजिए कि इमाम भी खड़ा होते हैं ना नमाज पढ़ाने, तो उसके इर्द गिर्द दो जो लोग हैं ना, वो भी कुरान को जानने वाले और यानी अच्छे लोग होने चाहिए, इल्म वाले। और इसी तरह से आप देखते हैं कि ओहद के शोहदा को जब दफन किया जा रहा था, तो जिसको जितना ज्यादा कुरान था ना आता, उसको उतना पहले दफन कर रहे थे, यानी ये एक ऑनर उसको दी गई। तो क्या पता चला कि शरीयत को नाफिज करने और इकामते दीन के लिए शूरा पर मुश्तमिल आदिलाना यानी असल शरीय अदल हो, काम भी मिलके करो और किसी की हक तलफी भी ना हो, इज्तमाई नज्म हो यानी डिसिप्लिन हो, शरीयत खुदाबंदी और खुद साख्ता शरीयत इंसानी का फर्क। अब ये लंबा जुमला है ना, तो आपको मैं शुरू में भी यही लिखवाया, अभी बोल देती हूँ, मैन मेड लॉज वर्सेस अल्लाह मेड लॉज, इनका फर्क आपको इस सूरत में दिखेगा। और तौहीद की जो वो खूबसूरत सात आठ किस्में है ना, इस सूरत में तौहीद हाकिमियत। और अगर इस पर कभी आपने कुछ सुनना हो ना, तो डॉक्टर इसरार साहब का कोई पुरजोर बयान सुन ले, जो उनके अंदर इस पे जोश और जज्बा था, और जो उनके अंदर से गजब आता था ना कि तुम नमाज रोजे पे ही रुक गए हो, हुक्मरानियां कैसे इस्लाम पे आएंगी, पाकिस्तान का लेने का मतलब यहाँ नमाजें पढ़नी नहीं थी, वो तो वहां भी थी, हिंद में भी इजाजत थी नमाज की, रोजे की हाकमियत यानी मुल्की सतह पे इस्लाम नाफिज हो। फिर इस सूरत में क्या यूनिक चीजें हैं, पहली बात देखिए वही तीन मुमकिन सूरतें जो वही की हैं वो इसमें हैं, वहयन मिम वराई हिजाब युरसिला रसूलन, ये आएगी जहां आयत वहां आप देखेंगे। एक सूरत हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछली सूरतों में, चार मुमकिन तरीकों से वही आती थी, और जो पढ़ लिए वो भी बता देती हूँ, सूरत सुआफात में इब्राहिम और इस्माइल का किस्सा कि बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी, तो वो ख्वाब का जरिया एक होता है। अब आइए जरा साथ साथ चलते हैं, सूरत शुरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक यूनिक चीज आप अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं सामने से कि ये कुरान पाक की वाहिद सूरह है जिसकी दो आयतों में हरूफ मुकत्ता आता है, हामीम खत्म, आइन सीन कौफ खत्म, कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, पहली नौ आयात रुकू नंबर एक है, अल्लाह तला की सिफात है, हामीम आइन सीन कौफ, अल्लाह जो जबरदस्त और हिकमत वाला है, इसी तरह तेरी तरफ और तुझसे अगलों की तरफ वही भेजता रहा, आसमानों की तमाम चीजें और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, वो बरतर और अजीम शान है, करीब है आसमान ऊपर से फट पड़े, और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकी तारीफ के साथ बयान कर रहे हैं, और लो जमीन वालों के लिए इस्तगफार कर रहे हैं। इसको हाईलाइट कर लें, पीछे भी आपने अर्शियों की दुआएं फर्शियों के नाते से पढ़ी थी, यहाँ दोबारा फरिश्तों की दुआओं की बात आ गई। हकीकत है कि एक बंदा अच्छा काम करके अपने ऊपर भी और दुनिया वालों पर भी रहम कर रहा होता है, लेकिन दुआएं उसको फरिश्तों से मिल रही होती हैं, और वो क्या कहते हैं, जमीन वालों के लिए गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। खूब समझ रखो कि अल्लाह ताला ही माफ फरमाने वाला रहमत वाला है, और जिन लोगों ने इसके सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया है, अल्लाह ताला इन पर निगरान है और आप इनके जिम्मेदार नहीं हैं। इसी तरह हमने आपकी तरफ अरबी कुरान की वही की है ताकि आप मक्का वालों को और इसके आसपास के लोगों को खबरदार कर दें, और जमा होने के दिन से जिसके आने में कोई शक नहीं डरा दें, एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह जहन्नम में होगा। जरा से इसको नोट करें, क्या बात है इसमें, हमारे सलफ सालेहीन इस एक आयत पे रोते रहते थे, रोते रहते थे, रोते रहते थे, लोगों ने किया इसमें रोने वाली क्या बात है, कहा मुझे नहीं पता कि मैं जन्नतियों में होऊंगा कि जहन्नमियों में। अब देखिए हमें तो ऐसे लगता है कि हम पूरे वीजे और पासपोर्ट जन्नत के जेब में लेकर फिरते हैं, लेकिन जिनको वाकई फिक्र आखिरत होती है वो तो कुरान की एक एक आयत को अपने लिए समझते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को एक ही उम्मत का बना देता, लेकिन जिसे वो चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, और जालिमों का हामी और मददगार कोई नहीं। क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज और वली बना रखे हैं, ये जुमला अभी से नोट करें, इस सूरत में वली और औलिया का लफ्ज शायद 9 दफा आता है, ना भी आया तो बस ये समझ लें कि बहुत दफा ये लफ्ज आता है। हकीकतन तो अल्लाह ही कारसाज है, वही मुर्दों को जिंदा करेगा और वही हर चीज पर कादिर है। क्या पता चला सूरत के शुरू में अल्लाह ने बता दिया कि दिल की आंखों से देखें, तो अल्लाह तला की कायनात को देखकर ही उसकी हैबत से इंसान कांप जाए। आपने भी यहाँ फरिश्तों के कांपने और उनके खौफ की बात की, आपके मेरे लिए भी यही नसीहत है कि कायनात को देखें या कुरान को पढ़ें, अल्लाह का खौफ महसूस करें। पीछे पढ़ा है सूरह फातिर में, आलिम कौन होता है जो अल्लाह की खशियत रखता है, तो आपके मेरे अमल की बातें कि जैसे फरिश्ते तस्बीह करते हैं हमने भी तस्बीह करनी है, फरिश्ते हमारे गुनाहों की माफी मांगते हैं तो हमने खुद भी मांगनी है, फरिश्तों की तरह हमें भी सिर्फ अल्लाह ही से मगफरत और दुआएं मांगनी है, और अल्लाह ताला हमें फरिश्तों की दुआओं का हकदार बना दे। जैसे शुरू में आपको कहा है कि बच्चों के लिए ये दुआ कीजिए कि उनकी दुआएं बदल जाए। दुआएं ठीक होंगी तो फिर ही कबूल होंगी। फिर रुकू नंबर 2 है, आयत नंबर 10 से 19, तौहीद पर दलाइल। जैसा कि आपको बताया कि सूरह शुरा में तौहीद हाकमियत है ना, तो इसके अंडर सारी आती हैं। ये खास तौर पे आयत आपको लफ्ज हुक्म से नजर आएगी, व मख्तलफ तुम फीही मिन शयइन फहुक्मुहु इलल्लाह। आप इसके अंदर लिख सकते हैं तौहीद हाकमियत, और जिस जिस चीज में तुम्हारा इख्तलाफ हो इसका फैसला अल्लाह ही की तरफ से है, यही अल्लाह मेरा रब है जिस पर मैंने भरोसा कर रखा है और जिसकी तरफ मैं झुकता हूँ। वो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंस के जोड़े बना दिए और चौपायों के जोड़े बनाए, तुम्हें इस वो इसमें फैला रहा है, इस जैसी कोई चीज नहीं। इस जुमले को हाईलाइट करें, ले सका मिसली ही शयन वह वसमी वलीम, और वो सुनने और देखने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला की मिसालें वैसे नहीं देनी चाहिए जैसे कि इंसानों की मिसाल है। आसमान और जमीन की कुंजियां उसी की हैं, मुराद खजाने, जिसकी चाहे रोजी कुशादा कर दे और तंग कर दे, यकीनन वो हर चीज को जानने वाला है। क्या पता चला कि अल्लाह के हाथ में है सब कुछ, आप उसके फैसलों पे राजी रहिए और उसके जानने पे भी यकीन रखिए। याद रखिए, रोजी की कमी बेशी इस दुनिया के निजाम को चलाने के लिए बहुत जरूरी थी। इस आयत को नोट कर लीजिए, इस आयत पे जो वही के कानून के खिलाफ दुनिया में रशिया ने एक सिस्टम बनाया था जिसको कम्युनिज्म कहेंगे, सारे कमाएं और एंड पे जाकर हुकूमत के अकाउंट में जमा करा दें, एंड ऑफ द मंथ हुकूमत सबको इकट्ठा 2-2 हजार डॉलर बांट देगी, खत्म हो गया कानून। आज ये जो दो चीजें हैं ना, कि कोई कुछ मुल्क है सोशलिज्म और कुछ कम्युनिज्म है, कुछ कहते हैं सारा कुछ आपका, हुकूमत का कोई हक नहीं, कुछ कहते हैं सारा हुकूमत का आपका कोई हक नहीं, इस्लाम ने इससे दोनों से हटकर आपको इतना प्यारा निजाम दिया, जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया वो ज्यादा रखे। हाँ, जब वो निसाब पे पहुंच जाता है और 1 साल तक रखता है तो ज़कात दे दे, नॉन मुस्लिम है तो जिम्मी बन के जिज़िया दे दे। इस्लाम जुल्म नहीं करता, क्योंकि आप देखिए ना कि जिसको पता है कि एंड ऑफ द मंथ मुझे भी रोटी मिल ही जानी है तो वो काम क्यों करे, और जिसको ये पता है कि मैं जितनी मर्जी मेहनत करूं एंड पे मुझे मिलना कुछ नहीं, तो सारा खत्म। दुनिया के सारे इज्म, ये जो पारा वही का, इसको समझिए, आज का दौर हो या माजी का या आने वाले जितने भी कवानीन बन रहे हैं, एक मुल्क में रहने के ये तरीके वो, अब जैसे मिसाल है टैक्सेशन, पूरे वेस्ट में एक ही तरीका है मोस्टली कि आपकी अर्निंग पे टैक्स लेते हैं, और जो जितना ज्यादा अर्न करता जाता है उसका टैक्स बढ़ता जाता है। सोचते हैं इस्लाम कहता है ये जुल्म है। हाँ, आप करोड़ रुपए महीने के कमाएं, 1 रुपया भी आपके ऊपर जकात नहीं है अगर आपने उसको 1 साल के अंदर अंदर ही खत्म कर दिया। इधर से पैसा मोमिन के साथ है, उधर से निकल जाता है। टनल जो होती है ना, उसमें चीज रुक नहीं सकती, देर इज नो स्टॉप साइन इन द टनल। इधर से गाड़ी आती है तो उसको उधर से निकलना, यू टर्न भी नहीं होता। पैसा ये है नफक, नफकत है टनल को, थुनल नॉर्वे में, थुनल, आप वहां रुकेंगे नहीं। तो इन्फाक क्या है कि पैसे को ऐसे करो जैसे फ्लरिश, गटर का पानी या आपके सिंक का पानी इधर से ऊपर से गया बाहर निकल जाए, फितरत का असूल है। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे सूरह हशर, पूरी इस्लामिक इकोनॉमिक्स का पिलर है। जहां भी मौका आएगा जितनी तौफीक हुई आपकी मदद कर दूंगी। इन डेप्थ में हमने उसको कई महीनों में पढ़ा, एक एक आयत पे घंटों लग जाते हैं। ये कुरान आपको सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं मिला प्लीज, जिस तरह तौरात तौरात खानी के लिए नहीं मिली थी, इंजील इंजील ख्वानी के लिए नहीं मिली थी, और आज अगर गीता को गीता ख्वानी के लिए पढ़ लें और जो दूसरों की किताबें हैं, तो फिर किताबें तो बेकार हो गई। ये क्या जरूरत है इतनी मुश्किल आयतों की, आपको एक एक आयत समझने में कितना टाइम लगता है, मैं ऐसे ही गुजर जाती हूँ, आप सोचते ही रह जाते, पता नहीं इसमें क्या था। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर सिंपल सिंपल होता, क्योंकि स्वाब ही है ना, हमने तो जमा करनी है नेकियां। ये किताब एक आपकी हैंडबुक है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं आसमानों जमीन की कुंजियां उसी की हैं जिसकी चाहे रोजी कुशादा कर दे और तंग कर दे। ना अमीर को फख्र करने की जरूरत है, ना गरीब को कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत है। हर दौर में अमीर भी रहे गरीब भी रहे, आज का मसला उलट हो गया, अमीर को हमने क्या कर दिया और गरीब को क्या डाल दिया। फरमाए यकीनन वो हर चीज को जानने वाला है, तो हमें अपने अमाल को ठीक करना है। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर कर दिया जिसके कायम करने का इसने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था। इस आयत को गौर से सुनिएगा, याद रखिए ये शुरू से लेके एंड तक बेसिक लॉज थे। वो महत्व शरिया यानी अल्लाह के नबी जो दीन लाए थे वो नया दीन नहीं था, बल्कि वो ट्रेन की आखिरी बोगी है। सबसे पहली बोगी कैली इंजन के साथ वो हजरत नूह की थी। यहाँ से शुरू हो रहा है कि ये वही का सिलसिला तो हजरत नूह के वक्त से शुरू हुआ, और जो बजरिया वही हमने आपकी तरफ भेज दिया है, और जिसका ताकीदी हुक्म हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा अलैहि सलाम को दिया था कि इस दीन को कायम रखना और इसमें फूट ना डालना। जिस चीज की तरफ आप इनको बुला रहे हैं वो तो इन मुशरिकीन पर बहुत गिरां गुजरती है। वही आज भी लोग वही के दुश्मन है। अल्लाह के नबी के दौर में तो मशहूर कर दिया था कि गारे हिरा में इनका शैतान आता है, नऊज़ बिल्ला। उम्मे जमील ने नबी से कहा था तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिए, नऊज़ बिल्ला। आज भी लोगों को कुरान नहीं अच्छा लगता, वो कहते हैं ये ऐसी बातें बनाई हुई है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपना पसंदीदा बनाता है, और जो भी इसकी तरफ रुजू करे वो इसकी सही रहनुमाई करता है। और इन लोगों ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद ही इख्तलाफ किया, और वो भी बाहमी जिद और बहस से। और अगर आपके रब की बात एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पहले से ही करार ना पा गई होती तो यकीनन इनका फैसला हो चुका होता, और जिन लोगों को इनके बाद किताब दी गई वो भी इसी की तरफ से उलझन वाले शक में पड़े हुए हैं। बस आप लोगों को इसी तरफ बुलाते रहें, इंशाल्लाह बोलिए। और जो कुछ आपसे कहा गया इस पर मजबूती से जम जाए, ये इस पर भी इंशाल्लाह बोलें। बताते बताते व मन अहसन कौलम के बाद में मन दा इलल्लाही व अमिला सालेहन, और अमल सवाले करना ही असल बात है। यानी मजबूती से जम जाए, कहने वाला ना ना बात माने तो उसकी बात का जीरो बराबर असर होगा। एक टांग असर नहीं होता कहने वाले की बात का अगर वो खुद अमल ना करे। किसी ने कहा कि बदतरीन है वो आलिम जो बेअमल है, और वो जाहिल जो आबिद है। यानी इबादत तो कर रहा है पर जहालत है, पता नहीं ठीक है नहीं, बिदत है सही है कि नहीं है। और वो आलिम जो इल्म तो ले रहा है लेकिन अमल नहीं कर रहा। पहली बात क्या कही, लोगों को बुलाना अल्लाह की तरफ। दूसरी बात यह कि खुद इस पे जम जाना है मजबूती से। तीसरी बात इनकी ख्वाहिशों पर नहीं चलना, ये बहुत अहम है। बहुत प्रेशर होता है मुबल्लिग पे, लोग इतने थ्रेट्स देते हैं, ये कह दिया तुम ये कर देंगे, उधर बात कर दी तो ये कर देंगे। और कह दें कि अल्लाह ने जितनी किताबें नाजिल फरमाई हैं मेरा इन पर ईमान है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम में इंसाफ करता रहूं। हमारा और तुम सब का परवरदिगार अल्लाह ही है, हमारे आमाल हमारे लिए और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, हम तुम में कोई कट हुज्जती नहीं। अल्लाह ताला हम सबको जमा करेगा और इसी की तरफ लौटना है। और जो लोग अल्लाह ताला की बातों में झगड़ा डालते हैं इसके बाद के मखलूक इसे मान चुकी, इनकी ख्वामखा की हुज्जत अल्लाह के नजदीक बातिल है, और इन पर गजब है और इनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह ताला ने हक के साथ किताब नाजिल फरमाई है, वही और तराजू भी उतारी है, और आपको क्या खबर कि शायद कयामत करीब ही हो। इसकी जल्दी इन्हें ही पड़ी हुई है जो इसे नहीं मानते। सच है ना, जिसने काम नहीं करना तो वही बार बार पूछ रहा होता है, जिसने करना होता है वो कर लेते चुप करके, और जिस पर यकीन रखते हैं वो तो इससे डर रहे हैं। इन्हें इसके हक होने का पूरा इल्म है। याद रखो जो लोग कयामत के मामले में लड़ झगड़ रहे हैं वो दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही लुत्फ करने वाला है, जिसे चाहता है कुशादा रोजी देता है, और वो बड़ी ताकत और बड़े गलबे वाला है। बड़ा ही प्रोफाउंड किस्म का रुकू था, कितनी ही बातें इसके अंदर आ गई। ईमान से मुतलिक देखें तो दो आयात हैं इसमें, शूरा 15, अदल का क्याम शरीयत का क्याम है। ये लिख लीजिए, इमाम इब्ने तैमिया कहा करते थे कि कोई हुकूमत कुफर पे चल सकती है, ना इंसाफी पे या जुल्म पे नहीं चलती। अगर आज हमारे मुसलमान मुल्कों में अदल हो जाए तो उनसे अच्छे मुल्क दुनिया में कोई नहीं है। फिर इसी तरह शूरा 18, फिक्रे आखिरत हो तो गम लग जाता है कि मरने के बाद क्या होगा। फिर इस रुकू में अपने लफ्ज किताब पढ़िए, बार बार लफ्ज किताब आया। किताब से मुराद असल दीन, यानी शरीयत की वो बुनियादी बेसिक चीजें जो हर दौर में रही, जिसमें ऑफ कोर्स तौहीद, शेर का फर्क और इसी तरह से अल्लाह ताला के हकूक की बात थी। और अहवा से मुराद खुद साख्ता इजाफे, यानी अब आपको इस सूरत में दिख रहा है कि एक तरफ अल्लाह की शरीयत है मुआशरे में और दूसरी तरफ हवा परस्ती है। आज भी तो यही मसला है, लोग इस किस्म के उल्टे सीधे मामलात क्यों लेके चलते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, वो सोचते हैं कि ये गलत है। आप देखिए कि मिसाल देती हूँ पर्दे की। कुरान ने एक वाजे करके एक औरत का लिबास और हिजाब और मर्द का भी बता दिया। अगर आप मुझसे पूछे ना पर्दा शुरू कहाँ से होगा, सेग्रीगेशन, औरत औरत की जिम्मेदारियों में रहे, मर्द मर्द की जिम्मेदारियों में रहे। अब जब आप ये बात करते हैं कि मर्द और औरतों को जब रखा ही लग जाएगा तो औरतों को क्या हर वक्त हर वक्त पर्दे रखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ बाहर जाते हुए अपने आप को एक खास तरीके से छुपा लेंगी। औरत पढ़ेगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, जेवर पहनेगी, जो औरतों में उसको अल्लाह ने हदूद दी है वो पूरी करेगी। अब जब इस बात को बाहर पेश करते हैं तो औरत का घर से निकलना, एक छोटा सा क्लिप था डॉक्टर इसरार साहब का, तो अपना एक तजुर्बा बता रहे थे कि जन्नत ज़ियाउल हक थे जिस दौर में, तो उन्होंने इनको ऑफर किया कि आप मेरी शूरा में आ जाएं, क्योंकि आशूरा की बात ही हो रही है। तो वो ये कहते हैं कि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि अभी तो मैं बोलता हूँ ना, मैं एक मुबल्लिग हूँ तो मैं यहाँ भी तो बोलता हूँ, तो अगर मैं ईवाने सदर या हुकूमत तक पहुँच गया तो मेरी सुनी जाएगी। ये कहते हैं कि मैंने अब जनरल ज़ियाउल हक साहब से कहा कि जनरल साहब ये बताइए मुझे कि आप बाकी चीज़ों पे तो गौर कर रहे हैं, लेकिन ये एयर होस्टेस का क्या इशू है? इस्लाम एक औरत को हज पे नहीं महरम के बगैर जाने देता, तो एयर होस्टेस जो हैं वो बेचारियाँ 8-8, 10-10 दिन दूसरे मुल्कों में जाती हैं, रहती हैं, कहाँ होते हैं उनके महरम? तो कहने लगे कि उन्होंने इसको ना सर हिलाया के बाद तो समझ आ रही है इन्होंने कि क्या कि अब नाश्ते और खाने की ट्रे मर्द नहीं रख सकते मर्दों के आगे। और जिस तरीके से एक छोटे से जहाज में एक औरत कठपुतली बन के होती, कितनों की नजरें और हवस उनके सामने पड़ती है। खैर कहते वो मेरी बात समझ गए, मान गए। मैंने उन्हें कहा कि इस पे आपको कुछ सोचने की जरूरत है। उसके बाद कुछ और एक दो चीज़ें की तो इनकी ये बात बाहर चली कि ईवान सदर से बात आती, तो कहने लगे कि उसी दौर के सिंध के गवर्नर की बीवी, उसने एक अपने जैसी औरतों का पूरा ग्रुप तैयार किया सड़क पे आगे मुजाहरे करने मेरे खिलाफ, इनको निकालें शुरा से, इनको ये औरतों के हकूक मार रहे हैं। यानी इन्होंने कहा कि औरत को जॉब की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा जरूरत कैसे नहीं, आप अपने घरों में कुछ करें। और आपको पता है कि एक ऐसा दौर गुजरा है दुनिया में कि घर घर के अंदर, ये जब इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश जब सारे इकट्ठे थे तो एक ऐसा दौर था कि घरों में कारखाने खुल गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि एक औरत अगर रिस्क कमाना चाहती है तो कमाए, तो उसके कितने अच्छे तरीके भी हैं। आप होम स्कूलिंग करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, यहाँ मौजू ये नहीं, लेकिन चूंकि मौजू शरीयत है, आप कहते हैं कि एक औरत ना कमाए, कि औरत नौकरी कर सकती? कर सकती। क्या मजबूरी में एक औरत को रिस्क की मुआश की फिक्र होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने उसके तरीके दिए हैं। तो फेथ इन एक्शन कह के हसूल रिस्क के लिए असबाब इख्तियार कीजिए, नज़र मुसब्बुल असबाब पर रखें। तफरकाबाजी उम्मत की कमजोरी और जवाल का सबब है, इससे बचना है। दीन के किसी मामले में शक और बहस और तकरार नहीं करनी, ना बात समझ आए ना तो दुआ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह मुझे बात समझ आ जाए। फिर इसके बाद रुकू नंबर 3, 20 से 29, दीनदार और दुनियादार का इंजाम, बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया की आखिरत से दी, मन का नयुरी दुहर सल आखिरती नजिद लहू फी हर सी ही, जिसका इरादा आखिरत की खेती का हो। आपका है, अल्लाह हमारे इरादे बना दे, हम इसे इसकी खेती में तरक्की देंगे, और जो दुनिया की खेती की तलब रखता हो हम इसे इसमें से ही कुछ दे देंगे। ऐसे शख्स का आखरत में कोई हिस्सा नहीं। क्या इन लोगों ने ऐसे अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं जिन्होंने ऐसे अहकाम दीन मुकर्रर कर दिए हैं जो अल्लाह के फरमाए हुए नहीं? यानी आज शरीयत के खिलाफ जितने कवानीन है वही से एक आयत की जद में आते हैं, यानी लोगों के बनाए हुए कवानीन मुकर्रर किए हुए। अगर फैसले के दिन का वादा ना होता तो अभी ही इनमें फैसला कर दिया जाता, यकीनन इन जालिमों के लिए ही दर्दनाक अजाब है। आप देखें कि ये जालिम अपने आमाल से डर रहे होंगे जिनके वबाल इन पर वाकई होने वाले हैं, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए वो बहिश्तों के बागात में होंगे, वो जो ख्वाहिश करें अपने रब के पास मौजूद पाएंगे, यही बड़ा फजल है। यहाँ जरा नोट कीजिएगा, ईमान तो सब समझ ही रहे हैं ईमान की ताकत, अमल सालेह क्या होता है, क्योंकि फेथ इन एक्शन हमारा तो पूरे दौरे कुरान का मेन थीम ही ये है, फेथ इन एक्शन आम मन हुआ मिलु सालियात। तो अमिलु सालियात की पहली शर्त इखलास अल्लाह के लिए हो, इसको भी हमने 23वें बारे में देखा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी शर्त यह है कि रसूल की इत्तबा हो। आज भी उम्मत मुस्लिमा उसी वक्त तरक्की करेगी, वही मुस्लिम मुल्क तरक्की करेगा, वही इदारा करेगा, वही मस्जिद करेगी जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके होंगे। जैसे सूरह शूरा आपको सिखा रही है एक जनरल पूरे तरीके से दुनिया में इस्लाम का प्रेजेंटेटिव बनना। तीसरी शर्त, आप कहते हैं बस दो ही है, नहीं तीसरी भी है, कामों को अधूरा ना छोड़ो, जो काम शुरू करें उसको पूरा करें, एंड तक उसकी क्वालिटी को मेंटेन करें, क्योंकि अधूरी तो दाल भी नहीं खाई जाती, कच्ची पक्की रोटी नहीं खाई जा सकती, निहारी और पायों का तो क्या सवाल होगा, और जो अमल उसके आखिरी अंजाम तक ना आपको पहुंचाए वो सवाले नहीं हो सकता। आज हमारे यहाँ कितने लॉ बने और टूट गए, कितने कवानीन बनते बनते अदालतों की नजरों हो गए, कितने हमारे फैसले आज भी मौलक हैं। वो मुल्क जहाँ आपको इंसाफ मिलने में आप फौत हो जाए और आपके बच्चे आकर आपकी जगह पे मुकदमे लड़ रहे हो, वो मुल्क कभी नहीं पनपेगा। इधर मुजरिम गुना करता था और उधर वो हक में वक्त के सामने आके खड़ा होता था। हजरत उम्र का दौर पढ़िए आप, एक बुक है बड़ी प्यारी दौरे फारूक की, हजरत उमर फारूक के दौर के जो मुकदमे और जो उनके वाकयात है, तो वो कहते ना कि जितना आप गाइडेंस को डिले करेंगे उतनी वो डिनाई होती जाएंगी, यही अदल का भी मामला है। अपनी जिंदगी में आज एक नियत करें, मैं भी करती हूँ आप भी करें, जो मामला है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके एक तरफ या दूसरी तरफ कर दें। वो इदारा, वो स्कूल, वो मस्जिद, वो इंस्टीट्यूट नहीं फ्लरिश करेगा जहाँ डिसीजन मेकिंग और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बीच में इतना वक्त हो जाए कि वो वैसे ही एक्सपायर हो जाए। आपने देखा है कि आपको कोई पासपोर्ट चाहिए होता है, वो कहते हैं आपके फ़ोन पे भेजेंगे और साथ ही लिखा होता है विद इन 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। आपके अक्सर बैंक की जो कीज होती हैं उसके अंदर कोई पासवर्ड्स होते हैं, दोबारा कीजिए। तो ये असूल आपको इनायात में मिल रहा है, अल्लाह करे कि हम भी इसके ऊपर अमल करने वालों में बन जाए। ये भी नहीं कि हैप हैजर्ड हो, करिए सोच समझ के लेकिन डिले ना करें। फिर इसके बाद एक और असूल अगली आयतों में, यही वो है जिसकी बिशारत अल्लाह ताला अपने बंदों को दे रहा है जो ईमान लाए और सुन्नत के मुताबिक नेक अमल किए। देखिए दोबारा दूसरी आयत में दोबारा अमीर सालेह आता है, पूरी वही इलाही का खुलासा ही अमल सालेह है। तो कह दीजिए कि मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता मगर मोहब्बत रिश्तेदारी की, जो शख्स कोई नेकी करे हम इसके लिए इसकी नेकी में और नेकी बढ़ा देंगे, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत कदरदान है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ बांधा? अगर अल्लाह चाहे तो आपके दिल पर मोहर लगा दे और अल्लाह ताला अपनी बातों से झूठ को मिटा देता है और सच को साबित रखता है, वो सीने की बातों को जानने वाला है, वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहगारों से दरगुजर फरमाता है और जो कुछ तुम कर रहे हो सब जानता है, ईमान वालों और नेकुकार लोगों की सुनता है और इन्हें अपने फजल से और बढ़ा कर देता है और मुनकरीन के लिए सख्त अजाब है। अब इस आयत पर जरा सी नजर रखिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस्लाम के इकोनॉमिकल सेटअप को पेश कर रही है। अगर अल्लाह ताला अपने सब बंदों की रोजी फराख कर देता, यानी सारे मिलियन एरियन हो जाते, बिलियन एरियन हो जाते, चले लखपति करोड़पति हो जाते, तो वो जमीन में फसाद बर्पा कर देते, लेकिन वो अंदाजे के साथ जो कुछ चाहता है नाजिल फरमाता है, वो अपने बंदों से पूरा खबरदार है और खूब देखने वाला। जरा सा समझिए, तू भी रानी मैं भी रानी, तो कौन भरेगा पानी? हर बंदे का दिल करता है कि वो अमीर हो। वो एक स्पीकर है ना, वो कहते हैं हर माँ अपने बच्चे को दुआ देती है और कहती है मेरा बेटा बाबू बनेगा, उसकी आंखों में सुरमे भी डालती है और उसको सजाती है, पाउडर शोडर लगाती है, साथ दुआ देती है मेरा बेटा बाबू लग रहा है ना। कोई माँ ये नहीं कहती कि मेरा बच्चा सड़कों पर खड़ा होकर ईंटें ढो रहा होगा, तो क्या सारे बाबू बन जाते हैं? आज अक्ल कहती है, आज भी कई नॉन मुस्लिम जब अल्लाह के बारे में उनको बताया जाए ना तो इस पे सवाल करते हैं कि वाई गॉड इज सो, अल्लाह रहम करे, यानी उनके ख्याल में कि अनजस्टिस है, तो उसका जवाब है फितरत का निज़ाम चलाने के लिए। काम छोटे बड़े नहीं होते, दुनिया का निज़ाम है, आपके घर में सिर्फ सारी बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी तो छोटी की जरूरत नहीं, चम्मच आप छोटे भी लेते हैं उसे बड़े भी लेते हैं, ये टी स्पून है, ये टेबल स्पून है, डिजर्ट खाने वाला स्पून है और ये चावल खाने वाला, भाई इतना याद कौन रहे, इस पर लिख दो। छुरियां 10-10 रखी होती हैं घर में, ये फ्रूट वाली छुरी, ये फलां वाली छुरी, और कोई दूसरी पकड़ ले लगता है इसको तो कोई तहजीब ही नहीं है। तो अल्लाह सुबहाना तआला ने हर बंदे को पूरा दिया है। हदीस में आता है कि कुछ लोगों की गुर्बत उनके दीन का दिफा करती है, अल्लाह उनको जरा थोड़ा सा पैसा दे दे तो बंदा ही मारे जाके, उनका जरफ ही नहीं होता है 1 लाख रुपए से ज्यादा का। और अपोजिट है कुछ अमीरों का, अल्लाह अगर माल रोक लेना तो वो कुफर पे चले मायूस हो जाएंगे। तो अल्लाह ने आपको मुझे देख के दिया है, बस अमीरी और गरीबी को एक दूसरे की इज्जत और जिल्लत का जरिया ना बनाएं तो दुनिया के कामों को चलाने के लिए है। और वही है जो लोगों के नाउम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है। वही है कारसाज और काबिले हम्दोसना, और इसी की निशानियों में से आसमान और जमीन की पैदाइश है और इनमें जानदारों का फैलाना। और वो इस पर भी कादिर है कि जब चाहे इन्हें जमा कर दे। तीन आयात ईमान से मुतल्लिक, शूरा 22। ये दुनिया रब चाहे तो वो दुनिया, मन चाहे लहुमा यशाउन इंदा रब्बी है। आप क्या मांगेंगे अल्लाह से, कुछ सोच के रखा हुआ? बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि अल्लाह का दीदार, नबी का साथ, सहाबियात का पड़ोस, अल्लाह की रजा, सब कुछ। देखिए अल्लाह की रजा के साथ तो जन्नत में जाएंगे ना इंशाल्लाह। आपको तो कि अल्लाह ने अपनी रहमत जो है ना वो इस दुनिया में इसी सूरत में रखी हुई है कि हम इस काबिल हो जाएं। अल्लाह हमें खुद ही देखना उठो के ले जाएगा, हमारे अमाल में कहाँ कोई इतनी चीज है। तो क्या पता चला कि ये जिंदगी रब चाहे गुजार लो तो वहां अल्लाह तुम्हारी पूछ ले, या तुम अल्लाह से पूछो वहां अल्लाह तुमसे पूछेगा। फिर शूरा 23, दुनिया में इन्वेस्ट किया हुआ माल, वक्त और अच्छे काम आखिरत में भारी मुनाफे के साथ लौटाए जाएंगे। आपने कभी दुनिया में कभी कहीं इन्वेस्टमेंट की है? वैसे कभी की हो तो वो डूबी हुई है, बहुत कम लोगों को पैसा लगा हुआ वापस मिलता है। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है हमारा कि कभी भी अल्लाह ही इस काम को चलाए तो चलता है, लेकिन अल्लाह ताला के इस बैंक में, अल्लाह ताला के इस बिजनेस में डालने वालों को वहां बहुत कई गुना बढ़ा चढ़ा के मिलेगा, और इतना भी बढ़ा देगा कि बंदा उसका तसव्वुर भी नहीं करेगा। फिर शूरा 26, अल्लाह नेक अमल मोमिनों की दुआएं कबूल फरमाता है। अकलमंद वो है जो कियामत में तोले जाने से पहले अपने आप को तोल ले। बस अल्लाह हमें अपने आप को तोलने वालों में शामिल कर दे। फेथ इन एक्शन, आखरत मानने वालों को दुनिया और आखरत दोनों मिलती हैं, और दुनिया मांगने वाले को सिर्फ दुनिया मिलेगी जितनी अल्लाह चाहेगा, और आखरत में हिस्सा नहीं मिलेगा। सूरत आहा में यही बात हम पढ़ चुके हैं पीछे, किसी के ज्यादा रिस्क से हसद नहीं करना और न अपने ज्यादा रिस्क पर अकड़ना है। नेक अमाल करने हैं ताकि हमारी दुआएं कबूल हों, और दुनिया की खेती, आप देखें ना कि आप आज बीज लगाते हैं तो फसल तो उगने में कुछ वक्त लगता है ना, आखरत की जमीन पे बीज डालिए ताकि वहां जाकर लें। देखिए ना, अगर आप यहाँ कोई चीज ऑर्डर करें मिसाल अमेजोन से, शर्त यह है कि वो आपका प्राइम ना हो, तो आप तो जा रहे हैं कल, तो वो तो कल आएगा, क्या फायदा? आप दुनिया में कोई भी चीज ऑर्डर करेंगे आपको पता ही नहीं आपने कब चले जाना है, तो आप कहाँ फिर ऑर्डर कराते हैं भला, जहां आप जा रहे होते हैं? नहीं, आप जाइए, हम वहीं शिप करा देंगे। ये मेरा लिए अमेरिका में आके मैंने जितना जुमला सुना है मैंने कहीं नहीं सुना। गो हैड, नो प्रॉब्लम, आप जहाँ जाएंगे वहां चीज मिल जाएगी। तो आखिरत की जमीन पे जाकर बीज लगाइए ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करें। और आप देखिए रमजान की जाती हुई घड़ियां, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त, यानी या सिर्फ आपको एक अभी ऐसी दिल में बात आ गई खेती को सोचकर, यानी पिछले 3-4 दिन से 3-4 ही प्रोजेक्ट ऐसे शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान में कि जिसके लिए इस वक्त एक एक पैसे की जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सोचती हूँ कि रमजान में इन पैसों की जरूरत का पड़ना ये हम में से बहुत सारों की नेकी है। तो ये जो इस दुनिया में रहकर हम आखिरत के हिस्से डालते हैं, और खास तौर पे वो जगह जहां हमने खुद कभी जाना भी है शायद के नहीं, तो हमारी नेकियों का नूर वहां पहुंचता है। फिर उसके बाद अगला रुकू भी बहुत खूबसूरत है, 30 से 43, रुकू नंबर 4 है। मुसीबतें हमारे अपने हाथों की कमाई है, तू बचा बचा के ना रख इसे कि तेरा आईना। हम जो अल्लाह से बचाते हैं ना वो बचता कोई नहीं है, वो किसी ना किसी तकलीफ में निकल जाता है। कैसे? वमा साबक उम्मी मुसीबतिन फबीमा कसबत अईदीकुम। तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला है, और वो तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा देता है, और तुम हमें जमीन में आजिज करने वाले नहीं हो। तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह ताला के ना कोई कारसाज है और ना मददगार, और दरिया में चलने वाली पहाड़ों जैसी कश्तियां इसकी निशानियों में से हैं। अगर वो चाहे तो हवा बंद कर दे और ये कश्तियां समंदरों पर रुकी रह जाएं। यकीनन इसमें हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए निशानियां हैं, या इन्हें इनके करतूतों के बायस तबाह कर दे। वो तो बहुत सी खताओं से दरगुजर फरमाया करता है, और ताकि जो लोग हमारी निशानियों में झगड़ते हैं वो मालूम कर लें कि इनके लिए कोई छुटकारा नहीं। तो तुम्हें जो कुछ दिया गया इसको जरा सा दिल पे ले, तो तुम्हें जो कुछ दिया गया, सोचे हम भला आपको क्या कुछ दिया गया। वो दुनिया की जिंदगी का कुछ यूं ही सा असबाब है, यानी कुछ उसकी हैसियत नहीं है। और अल्लाह के पास जो है वो इससे कई दर्जे बेहतर और पायदार है, एवर लास्टिंग। किसको मिलेगा? वो इनके लिए है जो ईमान लाए और सिर्फ अपने रब पर ही भरोसा रखते हैं। सोचिए जरा क्या कुछ मिला है हमें। इस दुनिया की सारी हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाएं और कई साल तक का हमारा रिस्क, रोटी पानी जमा हो जाए हमारे पास, उससे भी ज्यादा, हमारी 3 नस्लें खाती रहे, इससे भी ज्यादा है हमारे पास। लेकिन क्या है वो मच्छर के पर है। किसी को कोई के फलां जगह सेल लगी है, किस चीज की? मच्छरों के पर सेल पे बिक रहे हैं, कितने लोग भागेंगे? बाय वन गेट थ्री फ्री, क्या मच्छर? मुर्दा बकरी का बच्चा जिसके कानों में से कीड़े निकल रहे थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दुनिया है, सेल पे लगा हुआ है, लेंगे और सब छोड़ के भी इधर चले जाएंगे। तो ये है इस्लाम के अंदर वो सोच जो अल्लाह के नबी ने सहाबा को दी। ये वही इलाही का जो सबसे बुनियादी नुक्ता था, वो यही था कि दुनिया तुम्हें अपनी असल पे आके दिखे। ये 10 कामों की लिस्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। और कबीरा गुनाहों से और बेहयाइयों से बचते हैं, और गुस्से के वक्त भी माफ कर देते हैं, और अपने रब के फरमान को कबूल करते हैं, और नमाज की पाबंदी करते हैं, और इनका हर काम आपस के मशवरे से होता है। और जो हमने इन्हें दे रखा है इसमें से हमारे नाम पर देते हैं, किसमें से देते हैं? जो ये खुद कमाते हैं, जो इनको किसी और ने दिए, कोई लक्ष्मी ने भी, देवी ने दिया, जो हम देते हैं उसी में से हमारे नाम पर देते हैं। और जब इन पर जुल्मो ज्यादती हो तो वो सिर्फ बदला ले लेते हैं, और बुराई का बदला इसी जैसी बुराई है। और जो माफ कर दे और इसलाह कर ले इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। फिर बाकी अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। और जो शख्स अपने मजलूम होने के बाद बराबर का बदला ले ले तो ऐसे लोगों पर इल्जाम का कोई रास्ता नहीं। ये रास्ता सिर्फ इन लोगों पर है जो खुद दूसरों पर जुल्म करें और जमीन में नाहक फसाद करते फिरें। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और इन सबसे बढ़ के बड़ा बड़ा करके लिख लें दिल की तख्ती पे, क्या? और जो शख्स सब्र करे और माफ कर दे, यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से एक काम है, क्योंकि सबसे मुश्किल है। तो आइए देखते हैं इसमें हमने क्या देखा। एक आयत ईमान से मुतल्लिक, शूरा 36, फमा ऊती तुम मिन शयइन फमताउल हयात दुनिया। और जो तुम दिए गए, ऊती तो मजहूल है, ये नहीं कहा जो तुम्हें दिया गया, जो तुम दिए गए, मिन शयइन थोड़ा सा ही है, कुछ भी नहीं है। फमताउल हयात दुनिया, दुनिया की चीजें, मता पता किसको कहते हैं? बरतने की चीजें तो होती है, इसका कपड़ा, इंसान जिक्र करना भी पसंद ना करे, यानी वक्ती चीज जिसको इस्तेमाल किया और फेंक दिया, टिश्यू पेपर, वाइप्स, डिस्पोजेबल बर्तन, प्लास्टिक के और कागज के बर्तन, क्या वैल्यू है उसकी हमारे नजरों में? आखरत के बर्तनों के आगे दुनिया के बर्तन ऐसे ही हैं। वो माइंद अल्लाह ही खैर, जो अल्लाह के पास है, एक तो वो क्वालिटी में अच्छा है, खैर, और दूसरा बाबका ड्यूरेबल भी है, कम खर्च बाला नशीन। किनको मिलना है? लिल्लज़ीना आमनू वला रब्बिहिम यतवक्कलून। आज हम आला को छोड़कर अदना के पीछे नहीं भाग रहे। बनी इसराइल तो भागे ही थे, क्या हम नहीं भाग रहे? तो याद रखिए कि ईमान जितना गहरा होता जाता है उतना दुनिया के वाकयात में आखरत की तस्वीर दिखने लगती है। आप $1 खर्च करते हुए भी सोचते हैं कि इसका मेरी आखरत में क्या असर पड़ेगा, इससे मैं उधर क्या फायदा उठा सकती हूँ, और ये हकीकत खुल जाती है कि अब्दी नेमत के मुकाबले में वक्ती नेमत की कोई हकीकत नहीं। ये दुनिया की हर नेमत क्या है? वक्ती, टेम्परेरी, और अब्दी क्या है? जन्नत, हमेशा के लिए, अबदल आबाद। फिर आप देखिए ईमानी शख्सियत की जो खसूसियात हमने आयत 36 से 39 में पढ़ी, वही जो है ना उसका मतलूब इंसान ये है, जो आज इस बारे में हम पढ़ रहे हैं ना कि वही का गोल क्या है, अल्लाह ने कुरान और इन चीजों से हमें क्या बनाना चाहे, तो वो क्या? नंबर एक आमनो, ईमान लाए। सबसे पहले बंदा ईमान लाता है, फिर अपने रब पे तवक्कुल करता है, फिर कबीरा गुनाहों और बेहयाई से बचता है, फिर गुस्से के वक्त माफ करना, एक एक चीज पे अपना मुहासबा खुद करते हैं, अपने रब की बातों को कबूल करना, यानी जहां कोई नेकी का मौका है, कलब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सोचो में नहीं पड़ जाता। फिर अकामुस्सला, नमाज कायम करने वाले, आपस में मशवरे करने वाले। ये है इस्लाम का एक खूबसूरत निज़ाम कि जिसमें इंसान चलते हैं। फिर इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने वाले और बदला लेते वक्त ज्यादती ना करने वाले। अल्लाह एक एक खूबी मेरे अंदर तो डाल दे, हर एक अपने लिए यही बोले, फिर हमें दूसरों की भी दुआएं लग जाएंगी कि अल्लाह सब में डाल दे। फेथ इन एक्शन के कि हमारे बुरे अमाल की वजह से हम पर मुसीबतें आती हैं, लिहाजा अपना मुहासबा करना, बदला लेने की ताकत के बावजूद लोगों को माफ कर देना, गुनाह और बेहयाई के कामों से बचना है। अल्लाह आपको मुझे इसकी तौफीक दे। आगे रुकू नंबर 5, 44 से 53, बेटा के बेटी अल्लाह के हाथ में। वमै युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बादिही, और जिसे अल्लाह बहका दे इसका इसके बाद कोई चारा एहसास नहीं, और तू देखेगा कि जालिम लोग अजाब को देख कर कह रहे होंगे क्या वाकई वापस जाने की कोई राह है, और तू इन्हें देखेगा कि वो जहन्नुम के सामने ला खड़े किए जाएंगे, मारे जिल्लत के झुके जा रहे होंगे और कनखियों से देख रहे होंगे। जरा विजुलाइज कीजिए इसको। ईमानदार साफ कहेंगे कि हकीकी नुकसान वाले तो वो हैं जिन्होंने आज कयामत के दिन अपने आप पर अपने घर वालों को नुकसान में डाल दिया। इसको हाईलाइट करें और साथ ही अपना मुहासबा कर लें कि कहीं मैं अपने घर वालों को नुकसान में तो नहीं डाल रही। याद रखो कि यकीनन जालिम लोग हमेशा के अजाब में हैं, इनके कोई मददगार नहीं जो अल्लाह से अलग इनकी इमदाद कर सके, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसके लिए कोई रास्ता नहीं। करो क्या इस्तजीबू, अपने रब का हुक्म मान लो इससे पहले कि अल्लाह की जानिब से वो दिन आ जाए जिसका हट जाना नामुमकिन है। तुम्हें उस रोज ना तो कोई पनाह की जगह मिलेगी, ना छुप कर अनजान बन जाने की। अगर ये मुंह फेर लें तो हमने आपको इन पर निगेबान बनाकर नहीं भेजा, आपके जिम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। हम जब कभी इंसान को अपनी मेहरबानी का मजा चखाते हैं तो वो इस पर इतरा जाता है, और अगर इन्हें इनके अमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुंचती है तो बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। आसमानों की और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है, वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहे बेटे देता है, या इन्हें जमा कर देता है बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहे बांझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है, यानी हर मुमकिन सूरत बता दी औलाद के हसूल के मामले में। नामुमकिन है कि किसी बंदे से अल्लाह ताला कलाम करे मगर वही के जरिए। ये तीन चीजें वही की नोट कर लें, वही के जरिए या पर्दे के पीछे से या किसी फरिश्ते को भेजे, और वो अल्लाह के हुक्म से जो वो चाहे वही करे, बेशक वो बरतर हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से रूह को उतारा है, आप इससे पहले ये भी नहीं जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज है। रोक के आपसे पूछूं जो पहली दफा कुरान सुन रहे हैं, आपने सोचा था कुरान में इतना कुछ है जिसको आप कहते हैं कि यू डोंट एक्सपेक्ट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। अल्लाह नबी को भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन हमने इसे नूर बनाया, इसके जरिए से अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हम हिदायत देते हैं, और बेशक आप राह रास की रहनुमाई कर रहे हैं। इस अल्लाह की राह जिसकी मलकियत में आसमानों और जमीन की हर चीज है, आगा रहो सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। दो आयात ईमान से मुतल्लिक, शूरा 45, जो दुनिया में नहीं झुकता आखरत में शर्मसारी से झुकेगा, और 52 शूरा, ईमान कुरान के जरिए से हासिल होता है, जो दुनिया में दलील के सामने नहीं झुका कल वो अल्लाह के आगे भी झुक नहीं सकेगा। ये जो अंदर की अना होती है ना, आज भी देखिए कितने लोग हैं जो कुरान के खिलाफ बातें करते हैं। मैं नाम नहीं लेती किसी मजहब वालों का, लेकिन उसने कुरान पे मुकदमा कर दिया था, और उसने कहा था ये किताब दुनिया में इंसानों को मोहब्बत से जीने नहीं दे रही, इसमें इसकी बात उसकी बात। आज नहीं झुक रहे, कल झुकेंगे। आज कुरान को जला रहे, ये वही को जला रहे, आज नहीं मान रहे कुरान के, इस्लाम के निज़ाम को नहीं मान रहे, ये वही इलाही को नहीं मान रहे। तो आज आपके मेरे लिए मौका है, हम इस दलील के आगे मान जाए ना माने। आपने अभी तक जितने हुक्म पढ़े हैं ना 24 पारों में, ये सब वही के थे। नहीं मानेंगे ना मानिए, कल झुकना पड़ेगा। आज मान जाएगा इंसान, कल अल्लाह उसको इज्जत और बुलंदी भी दे देगा। यही है आमन और अमिलो सालेहात। तो फेथ इन एक्शन क्या है कि दुनिया की गुमराही का अंजाम आखरत में जिल्लत है, गुमराहियों के रास्तों से बचना है और अल्लाह तला से सिराते मुस्तकीम की दुआ करनी है। औलाद अल्लाह की नेमत है, बेटा या बेटी की बजाय नेक और साले औलाद की दुआ करनी है। आप देखते हैं कि औलादों की बातें, औलाद औलाद, ये इंसान के लिए क्या चीज़ है। आगे सूरह ज़ुख़रफ़ में इस पे बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन यहाँ से इस बात को भी नोट कीजिएगा कि अगर इस्लामिक कवानीन किसी मुल्क में नाफिज होंगे तो वहाँ इबॉर्शन बैन होगा। अनमेरिड लोगों का नहीं, मैरिड कपल को भी इबॉर्शन की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ ये सोचकर के बेटी हो रही है और इतनी बेटियां हम नहीं अफोर्ड कर सकते। आज पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा जुल्म वही होता है जहाँ वही नहीं, जहाँ इस्लाम नाफिज होता है, जहाँ अल्लाह ने इस्लाम के नाम पे इंसानों को जीने का हक दिया, उसमें आप मैं औरतों को तो अल्लाह ने बहुत ही हक दिया है। आगे देखेंगे इंशाल्लाह सूरह ज़ुख़रफ़ में मज़ीद बातें इसी मौजू पे आने वाली हैं।